नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रूपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।